अभिमन्यु ने इप्सिता के पीछे आते हुए कहा। इप्सिता, एक मिनट रुकिए, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? उस दिन हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सलामती के लिए किया। अगर हम उस दिन आपको मंडप में छोड़कर ना जाते तो आपकी जान चली जाती। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी। उसने कन्फ्यूज होते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारी जान को खतरा था, लेकिन किससे? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। वो इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पहले आप हमारी पूरी बात सुनिए। इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ से झटक दिया। जैसे ही लिफ्ट एक फ्लोर नीचे गई, तभी अचानक से लिफ्ट रुक गई और उसमें बिल्कुल अंधेरा हो गया। अभिमन्यु, जो इप्सिता से अपनी बात करने जा रहा था, वो अंधेरा होते ही एकदम घबराने लगा और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? लिफ्ट की लाइट कैसे ऑफ हो गई? प्लीज कोई लाइट जलाओ, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अभिमन्यु डर गया था। वो तेज आवाज में चिल्लाने लगा, लाइट, लाइट जलाओ, प्लीज कोई है यहाँ पर? ये लिफ्ट में लाइट कैसे बंद हो गई? अभिमन्यु को इस तरह चिल्लाते देख इप्सिता को याद आया कि अभिमन्यु को अंधेरे से प्रॉब्लम होती थी। इप्सिता ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स अभिमन्यु, हम हैं आपके साथ। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। इप्सिता ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला, उसकी फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश करते हुए कहा, रिलैक्स, हमारी तरफ देखिए अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढककर घुटनों के बल बैठ गया था और वो तेज आवाज में चिल्लाने लगा, प्लीज जल्दी से कोई लिफ्ट ओपन कर दो, प्लीज। अभिमन्यु की हालत देख इप्सिता परेशान हो गई। लिफ्ट अभी भी रुकी हुई थी, उसमें पूरा अंधेरा था। इप्सिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिमन्यु को कैसे संभाले। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अभिमन्यु के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हमारी तरफ देखिए अभिमन्यु, हम यहाँ पर हैं, अपनी आंखें खोलिए। अभिमन्यु तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, नहीं, प्लीज जल्दी से लिफ्ट खुलवाइए, प्लीज, हम यहाँ अंधेरे में नहीं रह सकते। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोली, हम जानते हैं अभिमन्यु, लेकिन प्लीज आप शांत रहिए, अगर आप इस तरह चिल्लाएंगे तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इप्सिता अभिमन्यु को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ पर? प्लीज लिफ्ट को खुलवाओ। इप्सिता को समझ में आ रहा था कि लिफ्ट से बाहर उसकी आवाज नहीं जा पाएगी। उसने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रही थी। उसने लिफ्ट के ओपन बटन को 3-4 बार दबाया, पर लिफ्ट नहीं खुली। अभिमन्यु तेज आवाज में चिल्ला रहा था, प्लीज जल्दी से इस लिफ्ट को खोलो। इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह चिल्लाते देखकर उसके पास आई और उसके काल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या करें हम अब? अभिमन्यु को कैसे संभालें? हम जानते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। अभिमन्यु का चेहरा पसीने से भीग गया था। इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन वहीं जमीन पर रखा और अभिमन्यु के बगल में आकर बैठ गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे को अपनी तरफ किया, फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, हमारी तरफ देखिए अभिमन्यु, हमने कहा हमारी तरफ देखिए। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद किए हुए ही इप्सिता की बात सुन रहा था। उसने डर और घबराहट की वजह से अपनी आंखें ही नहीं खोली थीं। इप्सिता ने गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अभिमन्यु, हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमने कहा हमारी तरफ देखिए। इप्सिता ने अभिमन्यु को डांटते हुए ये बात कही तो अभिमन्यु एकटक उसकी तरफ ही देखने लगा। वो थोड़ा सा शांत हो गया था। इप्सिता अभिमन्यु के पसीने से भीगे हुए चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोली। अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता को अपने गले लगा लिया। अभिमन्यु ने इप्सिता को कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दोनों हाथों से इप्सिता की कमर को पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगाए रहा। इप्सिता अभिमन्यु के दिल की धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। अभिमन्यु के दिल की धड़कनें काफी तेज थीं। वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था और काफी ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा था। इप्सिता के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अभिमन्यु को किसी तरह से संभाला और वो अभिमन्यु के सिर को सहलाते हुए बोली, आप प्लीज एक मिनट के लिए शांत रहिए, हम किसी न किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और नंदिनी का नंबर डायल करने लगी, लेकिन नंदिनी शायद बिजी थी, इसीलिए उसने उसका कॉल पिकअप नहीं किया। इप्सिता ने जल्दी से उसे मैसेज करते हुए कहा, नंदिनी, हम लिफ्ट में फंस गए हैं, प्लीज जल्दी से लिफ्ट ओपन करवाओ। इप्सिता ने उसे मैसेज करने के बाद अपने आप से कहा, नंदिनी शायद बिजी होगी, क्योंकि फ्री होती तो हमारा कॉल ही रिसीव कर लेती। जब उसने कॉल रिसीव नहीं की तो फिर मैसेज क्या देखेगी, हम किसे फोन करें? इतना बोलकर उसने तुरंत ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो, कहाँ हो तुम? ऐसे अचानक से तुम चली गई, तुमने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई। ध्रुव बोल ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए इप्सिता ने कहा, हमारी बात ध्यान से सुनो ध्रुव, हम यहाँ लिफ्ट में फंस गए हैं, प्लीज जल्दी से लिफ्ट को ओपन करवाओ, अभी और कुछ भी कहने या बताने का टाइम नहीं है। ध्रुव ने जैसे ही ये बात सुनी उसने परेशान होते हुए कहा, क्या तुम लिफ्ट में फंस गई हो और किस फ्लोर पर हो तुम? इप्सिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, हम ग्राउंड फ्लोर पर आ रहे थे, शायद हम सेकंड फ्लोर पर फंसे हुए हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर पर, हमें नहीं पता। हमारी लिफ्ट बंद हो गई है और अभी लिफ्ट के अंदर बहुत ही अंधेरा है, इसलिए प्लीज जल्दी से इसे ओपन करवाओ। हमने नंदिनी को कॉल किया लेकिन उसने हमारी कॉल ही रिसीव नहीं की। ध्रुव ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी स्टाफ को बोलता हूँ और मैं भी जल्दी से वहां पहुंचता हूँ। इतना बोलकर ध्रुव ने फोन कट किया और उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ है आप सब? प्लीज जल्दी जाकर लिफ्ट चेक करिए, लिफ्ट बंद हो गई है और आप लोगों को पता भी नहीं चला, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है, लिफ्ट में इप्सिता है, जल्दी चेक करिए, ध्रुव ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को ये बात बोली। तभी नंदिनी की एक असिस्टेंट जिसने ये बात सुनी वो भागते हुए नंदिनी के पास आकर बोली, नंदिनी मैम आपको पता है इप्सिता मैम लिफ्ट में फंस गई है और लिफ्ट रुक गई है। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी वो परेशान होते हुए बोली, क्या ईशु लिफ्ट में फंस गई, लेकिन कैसे? उस असिस्टेंट ने नंदिनी की बात सुनकर अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैम मुझे नहीं पता कि कब और कैसे, लेकिन वो अभी ध्रुव सर अभी सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाते हुए बात बोल रहे थे तो मैंने सुन लिया। नंदिनी ने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और उसने देखा उसमें इप्सिता की मिस कॉल लगी थी और उसका मैसेज भी था। वो मैसेज पढ़ते ही नंदिनी जल्दी से भागते हुए लिफ्ट की तरफ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु जो चिल्लाते चिल्लाते इप्सिता की बाहों में ही ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, अब वो चिल्ला नहीं रहा था, उसका पूरा वजन इप्सिता के ऊपर था। अभिमन्यु की हैवी बॉडी इप्सिता संभाल नहीं पा रही थी। इप्सिता वहीं जमीन पर बैठ गई और उसने अभिमन्यु को अपनी गोद में लिटाया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्के हाथ से थपथपाते हुए कहा, अभिमन्यु उठिए, हमारी बात सुनिए। अभिमन्यु इप्सिता अभिमन्यु को इस तरह बेहोश होते देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। इप्सिता के दिल की धड़कन मानो जैसे रोकी गई हो। अभिमन्यु कुछ बोल नहीं रहा था। इप्सिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसने अभिमन्यु के करीब जाकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं अभिमन्यु आप इस तरह बेहोश नहीं हो सकते, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना, आंखें खोली अभिमन्यु। इप्सिता अभिमन्यु को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए अभिमन्यु को उठाया। अभिमन्यु ने थोड़ी सी आंखें खोली और वो इप्सिता के परेशान चेहरे को देख रहा था। इप्सिता काफी ज्यादा घबरा गई थी, उसके चेहरे पर अभिमन्यु को लेकर फिक्र साफ नजर आ रही थी।
अभिमन्यु ने इप्सिता को जब अपने लिए इतना ज्यादा घबराते हुए देखा तो अभिमन्यु खुश होना चाहता था, लेकिन अभी जैसी उसकी हालत थी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसने जब आंखें खोली तो इप्सिता को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन इप्सिता अभिमन्यु से बात करने की कोशिश कर रही थी पर अभिमन्यु उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इप्सिता ने अपने फोन की तरफ देखा, नंदिनी उसे कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, नंदिनी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, हमारी हेल्प करो, हम लिफ्ट में फंस गए हैं। कॉल पर ये बात बोलते हुए इप्सिता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और उसकी आवाज़ सुनकर नंदिनी ने कहा, मैं बस वहीं पहुंच रही हूँ, तुम ठीक हो ना? इप्सिता ने हड़बड़ाकर कहा, हम तो ठीक हैं लेकिन अभिमन्यु उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से अभिमन्यु का नाम सुना वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोली, क्या तुम्हारे साथ लिफ्ट में अभिमन्यु भी है? इप्सिता ने कहा, हाँ, और उन्हें बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, वो अंधेरे में नहीं रह पाते हैं और ना ही बंद जगह पर, यहाँ तक वो तो लिफ्ट से आते जाते भी नहीं है, मेरे पीछे ही लिफ्ट में आए और ये सब हो गया, प्लीज जल्दी से लिफ्ट खुलवा दो क्योंकि इस टाइम वो ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में है, हम ऐसे नहीं देख सकते और हमें खुद भी नहीं पता कि हमने उन्हें कैसे संभाला हुआ है, प्लीज जल्दी करो और लिफ्ट को खुलवाओ वरना अगर अभिमन्यु को कुछ हो गया तो। इप्सिता इतना बोलते हुए रुक गई, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं हमारे होते अभिमन्यु को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। टू बी कंटिन्यूड, आप में से किस किस को अंधेरे और बंद जगह से डर लगता है? वैसे हमारे अभिमन्यु को तो लगता है और इसके पीछे वजह भी है जो आपको आगे पता चलेगी, लेकिन अभी हमारी इप्सिता है ना उसका ध्यान रखने के लिए। और जिसने भी गेस किया था, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको मोमेंट मिला क्या?